Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mane ho to jayega, lagega aapko kaha ho gaya, aur phir wo jo eshnaye hain वो आपको फिर व्याकुल कर देंगे, फिर पकड़ लेंगे। अरे बोले कुछ कमी जरूर है, हो करके फिर नहीं होगा, तो ये प्रतिबंध बन जाएगा। इसलिए भाष्यकार ने कहा कि या तो पहले ही संन्यास कर दो, और नहीं तो ज्ञान होने के पश्चात सर्वकर्म संन्यास करो तो निष्ठा हो जाएगी, निष्ठा होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी और आप मुक्त हो जाओगे। विमुक्तश्च विमुच्यते इहैव अविद्याकृत काम कर्म बंधनैर विमुक्तो भवति। इहैव माने इसी जीवन में अविद्या से उत्पन्न जो कामनाएं हैं और कामना से उत्पन्न जो कर्म है और अविद्या काम और कर्म का जो बंधन है उससे विमुक्त हो जाओगे, विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे। यहां मुक्त नहीं लिखा, विमुक्त लिखा है। मुक्त हो जाओगे तो मतलब यह है कि शायद कभी आपको मालूम ही ना पड़े ये काम, कोई कामना, कोई कर्म। बोले सब कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता रहेगा, चाहे वो दुनिया के ये जो मजे हैं हरगिज ये कम ना होंगे। अफसोस हम ना होंगे, अफसोस हम न होंगे। तो इसलिए विमुक्त, इसी को जीवन मुक्ति बोलते हैं। जीवन मुक्ति माने सब कुछ मालूम पड़ता हुआ, लेकिन आप कहीं भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होता, मेरा भाव उनमें कहीं भी स्थापित नहीं होता। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मुझे मर करके कहीं जाना है और मैं देह भर में परिच्छिन्न हूं, देह से बाहर मैं नहीं हूं। नारायण, मैं तो घर में ही मरूंगा, अब माफ करना, शास्त्र का ब्राह्मण के लिए ये नियम है कि वो घर में न मरे। अगर शरीर से ब्राह्मण है कोई तो उसे संन्यास लेकर के ही मरना चाहिए, इसलिए उसके लिए आतुर संन्यास का विधान है कि अगर मान लो संन्यास न भी ले पावे कोई तो मरते समय संन्यास ले ले, तो बोले फिर क्या होगा कि अगर जिंदा हो गया, मान लो जिंदा रह गया, नहीं मरा तो वो सन्यासी होकर के ही रहेगा फिर, और अगर मर गया और तत्वज्ञान नहीं हुआ है उसे तो फिर अगला जन्म उसका सन्यासी, शुरू से ही सन्यासी हो जाएगा। माने ब्राह्मण के लिए सन्यास धर्म जो है ये मुख्य है, इसलिए शम दम प्रति ये सब जो है जो ब्राह्मण के सहज स्वभाव है उन्हीं को वेदांत में साधन स्वीकार किया गया है। जो क्षत्रिय लोग हैं शरीर से, उनके लिए है कि वो वानप्रस्थ होकर के मरें। वो संन्यास भी ले सकते हैं लेकिन वानप्रस्थ तो जरूरी हो जाए, ये आश्रम धर्म की मर्यादा है। और जो वैश्य हैं जन्म से, उनको कम से कम गृहस्थ तो हो ही जाना चाहिए, घर में मर जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कामना ऐसी, आकांक्षा ऐसी बनानी चाहिए कि अगला जन्म उनका या तो ब्राह्मण का हो और या तो क्षत्रिय का हो। माने संन्यास की वासना बना लो तो संन्यास की वासना से अगले जन्म में आप सन्यासी हो जाएंगे। लेकिन वैश्वी सन्यासी इस जन्म में भी हो सकता है, ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है और क्षत्रिय के लिए ऑप्शनल है और वैश्य के लिए और भी ऑप्शनल है। तो ये क्यों? क्योंकि एहैव अविद्याकृत काम कर्म बंधनैर विमुक्ता, ये जीवन मुक्ति सिद्ध हो जाएगी। बिना सन्यास के जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं होती है। एक महात्मा थे, वो जिला बुलंदशहर में ही एक गांव है शाहपुर, वहां के रहने वाले थे। तो जन्म से क्षत्रिय थे, ठाकुर थे। अब वो महाराज, उनको ऐसी लगन लगी गृहस्थ आश्रम में ही, वेदांत में इतनी रुचि हो गई महात्माओं के साथ रहने से कि खेत थे उनके, तो खेत पे ही उन्होंने झोंपड़ी डाल ली अपने खेत पे ही। तो घर से भोजन आ जाता था और वो खुद भी वहीं रहते थे और वहीं भोजन करते थे, और घर वाले आके मिल जाते थे लेकिन वो घर नहीं जाते थे। माने उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ले लिया एक तरह से, ये समझो। और वो ग्रंथ भी पढ़ाते थे, हिंदी के ग्रंथ पढ़ाते थे, विचार सागर है, विचार चंद्रोदय है, वृत्ति प्रभाकर है, ये ग्रंथ पढ़ाते थे और अच्छा पढ़ाते थे। तो उनके पास महात्मा लोग भी आते जाते रहते थे, गृहस्थ लोग भी पढ़ने आ जाते थे। तो गृहस्थ वापस चले जाते थे, महात्मा लोग रुक जाते थे, तो उनका भोजन भी घर से ही आता था। तो घर वालों का यज्ञ हो गया और उनकी अपनी साधना हो गई, अंत में उनको तत्व ज्ञान हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब विद्वत संन्यास ले लेना चाहिए। बस जैसे याज्ञवल्क्य जी विद्वत संन्यासी हो गए, तो ऐसे विद्वत संन्यासी हो गए जीवन मुक्त। तो उनका वो रूप भी हमने देखा और पहला रूप भी देखा, एक ही विद्वत सन्यासी देखा है, बाकी तो विविदिशा से ही लोग सब गए हैं। तो विमुक्तो भवति अर्थात जीवन मुक्तो भवति, ये भी उपसर्ग जो है विशेष रूप से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो जाता है। और विमुक्तश्च सन् विमुक्तश्च विमुच्यते, विमुक्त होकर के और फिर विमुक्त हो जाता है। तो भाष्यकार ने तो इतना लिख दिया कि पुनः शरीरम न गृहणाति, उसके बाद फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म नहीं होता तो कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे? इसी को विदेह मोक्ष बोलते हैं। विदेह मोक्ष माने देहपात होने के पश्चात बिना देह के, जैसे परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप होकर के रहते हैं, इसको विदेह मोक्ष बोलते हैं। तो जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं सिर्फ दो बातें जान लेने से, कि इस शरीर में मैं अजन्मा हूं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने से शरीरे, और एक अपने को नित्य विज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप जान लेने से ये दोनों मुक्तियां सिद्ध हो जाती हैं, ये बात इसमें बताई है। अब ये दूसरा मंत्र मैं नहीं ले रहा हूं, अब तीसरे मंत्र पे आते हैं। ऊर्ध्वं प्राणं उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते, मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। अब और देखो परमात्मा का, आत्मा का दर्शन और करो। ये तो तटस्थ लक्षण हो गया शरीर के भीतर रहने वाला। अब बोले शरीर के भीतर कहां रहता है? तो कहते हैं कि ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति, आपके शरीर में एक तो प्राणवायु ऊपर की ओर चलती है और एक अपान वायु नीचे की ओर चलती है, और समान वायु कहां रहती है? नाभि में, और गले से ऊपर उदान वायु रहती है, और सारे शरीर में व्यान वायु रहती है। तो मैंने शरीर के पांच हिस्से कर दिए। तो ये प्राणवायु जो है ये इस नाभि से ऊपर ऊपर यहां गले तक ये प्राणवायु कहलाती है। लेकिन प्राणवायु का मतलब है उत्कर्ष, और अपान वायु का मतलब है अपकर्ष। नीचे की ओर गए तो जो पापी लोग होते हैं ना, अधार्मिक, उनके प्राण जब निकलते हैं तो नीचे के द्वारों से निकलते हैं, उनका अपान चल जाता है। और जो सामान्य या विशेष लोग होते हैं उनका प्राण जो है वो माने अपान प्राण में लीन हो जाता है, और प्राण फिर जहां से भी निकले वहां से निकल जाता है। और पापियों का प्राण अपान में लीन हो जाता है और फिर नीचे से निकल जाता है। बहुत से लोगों को मरते समय टट्टी पेशाब हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि नीचे से गए प्राण। नीचे से जिनके प्राण जाते हैं वो नरक में जाते हैं, और ऊपर से जिनके प्राण जाते हैं वो मध्यम मार्ग में रहते हैं या स्वर्ग इत्यादि जाते हैं। बोले ये क्या कोई अपने हाथ में है? क्या? हाँ, अपने हाथ में है। कैसा? कि आप प्राणों का उत्कर्ष हो ऐसा विधान करो, जीवन में सत्कर्म करो, उससे उत्कर्ष होगा। शास्त्र के अनुसार कर्म करने से उत्कर्ष होता है, और शास्त्र के विपरीत करने से अपकर्ष होता है। तो विपरीत करके तो अपान वायु को आप प्रबल करते हो, और उत्कर्ष करके वो सत्कर्म करके आप प्राणवायु को बढ़ाते हैं। तो अब ये इनका वो कहां है? जंक्शन कहां, कहां से प्राण उठकर ऊपर को जाता है और कहां से अपान नीचे की ओर जाता है। तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अपने यहां कौड़ी बोलते हैं, क्या? स्टर्नम, स्टर्नम। तो जो कुछ भी बोलते हो, ये जो हिस्सा है ना जहां से पसलियों का ये मिलते हैं यहां आकर के, ये कौड़ी खिसक जाती है ना जिन लोगों की, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। यही वो स्थान है। अच्छा, यही वो स्थान भी है जहां पर के पहले आया था ना कि हृदयाकाश है, तो हृदयाकाश का भी स्थान यही है। तो वहां हृदयाकाश में ये जीवात्मा आत्मा जो है रहता है, और वहीं से वो प्राण को ऊपर भेजता है और अपान को नीचे भेजता है। बस ये जीवन चलाता रहता है। ये जो बच्चा गर्भ में होता है ना, तो उसमें प्राण तो जब वो बाहर निकलता है तब उसके प्राण चलने शुरू होते हैं, और जिन बच्चों के प्राण नहीं चल पाते हैं उनको डॉक्टर मुंह से उनके लंग्स में फूंक मारते हैं और तब वो चालू होते हैं। माने इनिशियल धक्का जो है उनको देना पड़ता है, और कुछ का प्रसव काल में ही चालू हो जाता है तो उनको धक्का नहीं मारना पड़ता। लेकिन अपान सबका रहता है। ये अपान भी जीवन के लिए जरूरी है ना। रहे अपान को ऐसी चीज मत समझ लेना कि तो घटिया ही चीज है। ये तो वायु ही है, उसमें घटिया बढ़िया क्या है? स्थान घटिया है इसलिए घटिया कहलाते हैं वो। अब मलमूत्र त्यागने के बाद तो शौच करना पड़ता है ना, और यहां हाथ लग जाए तो शौच थोड़ी करना पड़ता है। तो स्थानों की अपवित्रता के कारण अपवित्र माना गया है। तो मध्य वामनम आसीनम, इन दोनों के मध्य में प्राण और अपान की संधि में वामन भगवान बैठे हुए हैं। वामन तो विष्णु ही को बोलते हैं, अदिति के जो पुत्र थे वामन, उपेंद्र उनका नाम पड़ा पीछे जब बलि के यहां गए तो छोटे बन के गए थे, ऐसी कथा है ना वामन अवतार की, छोटे बन के गए और जब उसने कह दिया कि दिया तो त्रिविक्रम हो गए नारायण, सारी धरती आकाश पाताल सब दो में ही नाप ली और बोले अब बता तीसरा पैर कहां रखूं। बड़ा कहता था महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि ये बलि जो था ये इसे अभिमान हो गया ना कि बोल तुझको जो चाहिए सो मांग ले, सारी धरती चाहिए तो सारी धरती ले ले, तो बोले तेरे बाप की धरती है तेरी धरती नहीं हुई, विरोचन की धरती नहीं हुई, प्रहलाद की धरती नहीं हुई, किसी की धरती नहीं हुई, तेरी धरती कहां से आ गई जो सारी धरती को तू देने की बात कर रहा है। तो इसीलिए उसको बलि का बकरा बनाया, अब ये कहावत ही बन गई बलि का बकरा बनना। उसके अभिमान को काटने के लिए भगवान ने सारी धरती एक पैर में नाप ली और सूक्ष्म सृष्टि सारी दूसरे पैर में नाप ली और बोले अब बता तीसरा पैर कहां रखूं। बड़ा कहता था दिया दिया दिया, तो बोले महाराज दाता को नाप लो फिर, देने वाली चीज तो आपने नाप ली लेकिन दाता तो अभी शेष है, तो ये अहम जो है इसको आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। तो ये अहम का जो विलय है असल में तभी शरणागति पूर्ण होती है। तो कहते हैं कि मध्य वामनम आसीनम, मध्य में प्राण और अपान की मध्यावस्था में ये वामन भगवान बैठे हुए हैं। ये जीव को ही वामन बोलते हैं, वामन माने छोटा, तो ये जीव छोटा सा मालूम पड़ता है ना, अणु परमाण इसका मानते हैं तो ये छोटा है लेकिन असल में है ये ब्रह्म। तो बोले इसकी ब्रह्मता कब मालूम पड़ेगी कि जब वो अभिमान पूर्वक कहेगा कि मैंने ये दिया तुझको दिया, आप क्या दोगे नारायण। तो ये सब कुछ परमात्मा का पहले से ही है, ये जानना ही ये त्रिविक्रम है। जागृत अवस्था को नाप लिया, स्वप्न अवस्था को नाप लिया, सूक्ष्म सुषुप्ति अवस्था को नाप लिया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों सृष्टियों को नाप लिया, तो अब ब्रह्म हो गए। इसी को तो ब्रह्म कहते हैं, बृहत्वात् ब्रह्म, जो महान हो बड़ा हो जिससे बड़ा और कोई न हो उसको ब्रह्म कहते हैं। तो है देखने में तो छोटा है, ये वामन है जीव जो है तो देखने में तो छोटा है लेकिन है ये ब्रह्म, है ये परमात्मा। मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते, या विश्व माने कोई, विश्व देवा भी तो एक अलग से देवता है ना, वो नहीं है, विश्व माने सर्वे, सारे देवता लोग जो हैं वो इसी की उपासना करते हैं, इसी वामन की उपासना करते हैं। जब वामन भगवान का पैर जहां जहां जिस लोक में पहुंचा था वहीं वहीं उनकी पूजा हुई थी, तो बोले यहां भी सारे देवता पूजा कर रहे हैं, किनकी, इसी जीव की। ये 15वें अध्याय में भगवान ने जीव को क्या बोला है, ईश्वर क्या है वो श्लोक, उत्क्रामति ईश्वर, शरीरम यदवापनोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वर। तो वहां ईश्वर का अर्थ जो है वो जीव है, ये अपने संसार का ईश्वर है नारायण, और एक संसार का ईश्वर ये जीव, इस संसार का ईश्वर दूसरा जीव, और कितने जीव तो कितने ईश्वर हो गए। तो बोले सब जीवों को मिला दो तो सब ईश्वरों का एक ईश्वर नारायण, वो ईश्वर है। तो असल में तो यही ईश्वर है। अब सब अपने अपने कमंडल में पानी भर कर रखे हैं, बोले ये हमारी गंगा जी, ये हमारी गंगा जी, ये हमारी गंगा जी। गंगा जी नहाने जाते हैं ना तो सब जल ले आते हैं वहां से, सबकी गंगा जल ही भरी रखी रहते हैं। अच्छा किसी से मांगो ना, एक पड़ोस में मर गया आदमी तो उसके यहां तो था नहीं गंगा जल, तो लोगों ने कहा भाई इसके मुंह में गंगा जल डालो। तो पड़ोस से गंगा जल लेने गया वो, तो पड़ोसी ने दिया नहीं, बोले ये हमारा गंगा जल है, जरा सा तो रह गया, तुम्हें दे देंगे तो हमारे पास क्या है। फिर दूसरे तीसरे पड़ोस में दूसरे से मांग के लाया, तो हमारा गंगा जल है। अरे तुम्हारा काय का गंगा जल है। तो ये ईश्वर जो है एक ही ईश्वर है, और सबने अपने अपने ये दायरे बना रखे हैं कि इतने इतने दायरे वाला हम ईश्वर, इतने दायरे वाला हम ईश्वर। एक ही ईश्वर की सारी संपत्ति है, मालिक सबका एक। तो विश्व देवा उपासते, सारे देवता लोग जो है इसी ईश्वर की उपासना करते हैं। कौन से देवता? तो नहीं, ये इंद्रियों के जो देवता है ना, 33 कोटि देवता आपके शरीर में रहते हैं। अब आंख का देवता सूर्य है, घ्राण का देवता अश्विनी कुमार है, रसना का देवता वरुण है, कान का देवता दिग देवता है, त्वचा का देवता वायु है, वायु देवता है। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय के देवता हैं, पूरे शरीर में देवता भरे हुए हैं। और ये अपनी अपनी टैक्स जो है वो किसको भरते हैं नारायण? ये सब उसी जीव के लिए भरते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेमो, किस देवता के लिए हम ये हविष दे रहे हैं? बोले इसी जीव के लिए दे रहे हैं, जो इस शरीर में भोक्ता बना बैठा है उसी के लिए सारे देवता। कोई रूप ला रहा है, कोई रस ला रहा है, कोई गंध ला रहा है, कोई स्पर्श ला रहा है, कोई शब्द ला रहा है। विश्वे देवा उपासते, तो अब समझ में आ गई क्या है आत्मा? अरे आप ही हो आत्मा, ये समझ में आने की बात। हम आत्मा ही हैं, और ये स्थान जो बताया ना प्राण और अपान की संधि में, ये तो संधि में लक्ष्य करने के लिए बताया है, वरना तो ये सारे शरीर में ही रहता है। एक जगह तो उसको बताया जाता है इसलिए कि ध्यान बैठ जाए, वरना तो सारे शरीर में ये आत्मा रहता है। और शरीर क्या है? मेरा शरीर में, पूरे में शरीर में आत्मा है, आपके पूरे शरीर में आत्मा है, और हमारे और आपके बीच में क्या है? है तो ये भी आकाश भी तो शरीर ही है ना। आकाश जिसका शरीर है उसमें भी तो आत्मा है, तो आत्मा से बाहर खाली जगह कौन सी है? कोई नहीं है, ठसा ठस है। तो मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते, ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति, प्रत्यक अधः गस्यति। ये इसकी संधि भाष्यकार ने की है। भीतर नीचे की ओर जाता है। अच्छा अब देखो इसको प्रैक्टिकल बताता हूं। प्रैक्टिकल क्या है कि जैसे रोजाना बैठते होगे थोड़ी बहुत देर के लिए, जब थोड़ी देर के लिए बैठो आप आसन से लगा के बैठो, है ना, तो यहां पे जो है ये मध्य स्थान में ऐसा भाव करो, भाव ऐसा भाव करो कि यहां पर एक रोशनी हो रही है। और उसका काम क्या है? उपनिषद में तो ऐसा लिखा है कि यहां एक कमल है, और वो कमल जो है उसकी पंखुड़ियां नीचे की ओर है। अब ये भाव से पंखुड़ियां ऊपर की ओर कर लीजिए, भाव से। बीच में पराग है, पराग के ऊपर आत्मदेव हंस के रूप में बैठे हैं, हंस के रूप में बैठे हैं, और वो हंस अपना पैर से पराग को दबाता है, नीचे को दबाता है तो अपान वायु चालू हो जाती है, फिर वो पैर ऊपर को करता है तो प्राणवायु चालू हो जाती है, दबाया उठाया, दबाया उठाया, यही तो अपान और प्राण है। दबाया तो अपान हो गया और उठाया तो प्राण हो गया, और उसमें से आवाज निकल रही है, हंसा सोहम हंसा सोहम हंसा सोहम नारायण। ये मैं मंत्र नहीं बता रहा हूं, ये तो आप जिस गुरु से ले उससे पूछ रहा हूं, लेकिन ये उपनिषद में लिखा हुआ, हंसोपनिषद में ये बात लिखी हुई है। जो लिखी पड़ी बात है उसे सबके सामने बताने में कोई बात नहीं है। तो ये इसका प्रैक्टिकल हिसाब है। तो वही जो हंस है उसी को यहां वामन कहा है। वामन तो छोटे के अर्थ में है। अच्छा देखो, इतना बड़ा अनंत संसार है, अनंत संसार धरती मत समझ लेना, पूरे विश्व प्रपंच के लिए कह रहा हूं, अनंत है। उसमें कहीं क्षीर सागर है, अनंत का एक हिस्सा क्षीर सागर हो गया। क्षीर सागर के एक हिस्से में शेषनाग है, और शेषनाग के एक हिस्से में नारायण लेटे हुए हैं चतुर्भुज। तो कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ? नारायण तो छोटे हो गए, सबसे छोटे तो नारायण हो गए, उनसे बड़े शेष भगवान हो गए, उनसे बड़ा क्षीर सागर हो गया, उनसे बड़ा अनंत प्रपंच हो गया। तो क्या वास्तव में ऐसा है? बोले नहीं, वही जो वामन से दिख रहे हैं, छोटे से दिख रहे हैं नारायण, वो तो ध्यान करने के लिए है। असल में तो प्रपंच के रूप में वही नारायण है, उसी में क्षीर सागर है, उसी में शेष भगवान है, उसी पर नारायण विराजते हैं। तो ये जीव को ब्रह्म बताने का एक ढंग है, एक तरीका है। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। अगर ये हंस महाराज भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट का अर्थ जो है देहाद् विमुच्यमानस्य, देह से निकल जाए, बोले उड़ गया हंस, कहते हैं ना कोई मर जाता है तो हंस उड़ गया, तो ये जीवात्मा जो है ये हंस है, ये जब इस शरीर से निकल जाता है तो किमत्र परिशिष्यते, यहां क्या बच रहा था? सब लोग कहते हैं अरे जल्दी से जल्दी इसको शमशान ले जाओ। तो जिसके बिना ये शरीर जो है मुर्दा हो जाता है, वो प्राण है कि ये जीवात्मा है? तो कोई कहते हैं प्राण है, तो उसका खंडन तो अगले मंत्र में करेंगे। यहां तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यही जीवात्मा जो है, इसी की वजह से यह जीवन चल रहा है, इसीलिए इसका नाम जीवात्मा है। जीवात्मा माने जो जीवन, जीवन वाला आत्मा है, जो प्राणों को धारण करता है। तो ये जीवात्मा जो है अगर शरीर में से निकल जाए नारायण, तो फिर इसमें क्या शेष रहता है? कुछ शेष नहीं रहता। तो बोलिए, निकलने वाला और आने वाला ये कैसा आत्मा है भाई? आत्मा को तो बताते हैं कि वो ना कहीं आता है ना जाता है। तो बोले ये अभी तो ये सिर्फ बीच वाले को बताया है ना, इसलिए इसमें आने जाने का भी आरोप कर दिया कि इसमें से निकल गया, इसमें से आ गया। अब इसका जब आप असली रूप समझोगे तब वो न कहीं आता है और न कहीं जाता है। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।